एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हम सबके अंदर है, हमारी भावनाओं की दुनिया।
हाँ।
है ना, गुस्सा, खुशी, डर, प्यार, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ एहसास है या इनके पीछे कोई गहरा राज भी है?
हाँ, और क्या विज्ञान इसमें हमारी मदद कर सकता है, कुछ अनोखा बता सकता
बिल्कुल,
है?
आज हम यही कोशिश करेंगे। डिलन इवेंस के काम के जरिए ना भावनाओं के पीछे का विज्ञान समझेंगे।
और ये विषय देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ना?
बहुत ज्यादा। हम सब रोज कितना तनाव झेलते हैं, फटाफट फैसले लेने पड़ते हैं, और लोगों से मतलब बेहतर ढंग से जुड़ना भी है।
सही कहा।
तो ऐसे में अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, जिसे आजकल वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं,
हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस।
वो तो एक सुपर पावर जैसा बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि इवेंस का नज़रिया इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो पहले डाइलन इवेंस की बात करते हैं। ये कोई मतलब एक ही दायरे के विचारक नहीं है।
हाँ, मल्टी टैलेंटेड लगते हैं।
बिल्कुल। कमाल की बात ये है कि इन्होंने कई अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, फिर दिमाग कैसे काम करता है, कॉग्निटिव साइंस,
अच्छा।
हमारे मन का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, और यहाँ तक कि कंप्यूटर कैसे सोच सकते हैं, एआई में भी इनकी गहरी दिलचस्पी और जानकारी है।
वाह, यानी कई नावों पर सवार है और अच्छे से हैं।
हाँ, और यही तो उनकी खासियत है।
अच्छा, कैसे?
वो मुश्किल से मुश्किल साइंटिफिक बातों को भी ना बड़े आसान और दिलचस्प तरीके से समझा देते हैं।
जैसे कोई कहानी सुना रहा हो।
बिल्कुल। और वो अलग अलग विज्ञानों जैसे न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सबको मिलाकर भावनाओं की एक बड़ी मतलब पूरी तस्वीर दिखाते हैं।
उनका नजरिया थोड़ा हटके है, मैंने सुना है।
हाँ, वो कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ वो चीजें नहीं जो हम महसूस करते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये हमारे अंदरूनी औजार हैं, टूल्स हैं।
अंदरूनी औजार। अच्छा, तो फिर इवांस के काम का निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो?
देखिए, उनका मेन पॉइंट ये है कि भावनाएं, जिन्हें हम अक्सर लॉजिक का, समझदारी का दुश्मन मानते हैं।
हाँ, मानते तो हैं कि भाई इमोशनल मत हो, दिमाग से काम लो।
बिल्कुल। पर इवांस कहते हैं ये दुश्मन है ही नहीं, बल्कि ये तो लाखों सालों के विकास का नतीजा है। ये हमारे शरीर और दिमाग में बने ऐसे परिष्कृत सिस्टम हैं जो हमें जिंदा रहने और सही वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करते आए हैं।
अच्छा, मतलब ये बेकार नहीं है बल्कि काम की चीज है।
बहुत ज्यादा काम की चीज। उनका मुख्य तर्क ये है कि हर भावना, हर एक भावना हमारे पुरखों के सामने आई किसी खास चुनौती या समस्या का हल निकालने के लिए विकसित हुई।
ये तो उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देता है।
हाँ, कौन सी सोच? कि भाई दिमाग, तर्क अलग है और दिल, भावनाएं अलग, और दिल की सुनना तो खतरनाक है। इवांस कहते हैं नहीं, असल में सही फैसले लेने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, एसेंशियल हैं।
कैसे? मतलब भावनाएं फैसले लेने में कैसे मदद करती हैं?
वो हमारे अंदर के तेज अलार्म सिस्टम की तरह है जो किसी स्थिति को झट से भांप लेते हैं और हमें सही एक्शन के लिए तैयार करते हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से।
वाह, सोच से भी तेज।
हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भावनाएं हैं किस लिए? और इवांस का जवाब है, ये बहुत जरूरी कामों के लिए है।
चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पुराने जमाने में जाएं, खासकर वेस्टर्न थॉट में, प्लेटो थे, स्टोइक दार्शनिक थे।
हाँ, स्टोइक्स।
वो मानते थे कि भावनाएं, जिन्हें वो पैशंस कहते थे, वो बेकाबू घोड़े की तरह हैं, जिन्हें तर्क की लगाम से कसकर रखना जरूरी है, वरना वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगे।
बिल्कुल। और सदियों तक यही सोच हावी रही, लेकिन फिर आए चार्ल्स डार्विन।
हाँ, डार्विन, एवोल्यूशन वाले।
उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अरे नहीं, ये भावनाएं बेकार नहीं है, ये तो विकास का नतीजा है, इवॉल्व्ड एडेप्टेशंस।
एडेप्टेशंस मतलब माहौल के हिसाब से ढलना।
हाँ बिल्कुल। ये हमें आपस में कम्युनिकेट करने, खतरे पहचानने और जिंदा रहने में मदद करती हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव। डार्विन ने ही एक तरह से भावनाओं के साइंटिफिक स्टडी की नींव रखी।
अच्छा, तो डार्विन के बाद क्या हुआ? वैज्ञानिकों में क्या बहस चली?
बहस ये छिड़ी कि भाई भावनाएं पहले शरीर में महसूस होती हैं या दिमाग में।
इंटरेस्टिंग सवाल है।
और यहीं पर एक मजेदार थ्योरी आई, जेम्स लैंग थ्योरी।
जेम्स लैंग क्या कहती थी ये?
इसका कहना था, हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हम रोते हैं, बल्कि हम रोते हैं इसलिए दुखी महसूस करते हैं।
क्या, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब पहले बॉडी रिएक्ट करती है, फिर इमोशन आता है।
हाँ, जैसे पहले रोना, दिल धड़कना, कांपना, और फिर दिमाग उस रिएक्शन को महसूस करके भावना का नाम देता है। दुख, डर, खुशी, सुनने में कितना अजीब है ना?
बिल्कुल अजीब है। तो क्या लोगों ने मान लिया इसे?
नहीं, इसकी आलोचना भी हुई। वाल्टर कैनन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई हमारे शरीर के रिएक्शन तो बहुत धीमे होते हैं,
हाँ,
और काफी हद तक एक जैसे भी होते हैं। गुस्से में भी दिल धड़कता है, डर में भी, खुशी में भी।
सही बात है। तो सिर्फ धड़कन से कैसे पता चलेगा कि कौन सी भावना है?
एग्जैक्टली, ये थ्योरी हमारी भावनाओं की तेजी और उनके इतने सारे अलग अलग शेड्स को नहीं समझा पाती थी।
तो फिर आगे क्या हुआ? कहानी में कोई नया मोड़ आया?
हाँ, एक बड़ा मोड़ आया जिसे कॉग्निटिव टर्न कहते हैं, यानी सोच और समझ की भूमिका सामने आई।
अच्छा, कॉग्निटिव यानी दिमाग का रोल।
बिल्कुल। शेक्टर और सिंगर नाम के दो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भावना के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो शरीर में हलचल, मतलब अराउजल,
जैसे दिल का धड़कना।
हाँ, और दूसरा उस हलचल को हम क्या मतलब देते हैं, हमारी व्याख्या, हमारा कॉग्निटिव लेबल।
यानी बॉडी का सिग्नल प्लस दिमाग की सोच इक्वल्स टू भावना।
बिल्कुल। उन्होंने एक फेमस प्रयोग भी किया था एड्रेनलिन वाला। लोगों को एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जिससे उत्तेजना हुई, फिर कुछ लोगों को मजाकिया माहौल में रखा, कुछ को गुस्सैल माहौल में, और नतीजा, लोगों ने अपनी उसी शारीरिक उत्तेजना को माहौल के हिसाब से खुशी या गुस्से का नाम दिया।
अरे वाह, मतलब माहौल और हमारी सोच ने भावना तय कर दी।
हाँ, और इसी बात को और गहराई दी अप्रेजल थ्योरिस्ट्स ने, जैसे रिचर्ड लाजर।
अप्रेजल मतलब आंकना?
हाँ, किसी स्थिति को हम कैसे आंकते हैं जो अक्सर बिना सोचे समझे तुरंत हो जाता है, वही तय करता है कि हमें कौन सी भावना महसूस होगी।
मतलब घटना नहीं, बल्कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं, वो जरूरी है।
बिल्कुल। अगर हम किसी चीज को खतरा मानते हैं तो डर लगता है, अगर अन्याय मानते हैं तो गुस्सा आता है। हमारी सोच ही हमारी भावना को रंग देती है, शेप देती है।
कमाल है। तो शरीर का रोल भी है, दिमाग की सोच का भी, लेकिन क्या ये भावनाएं दुनिया भर में एक जैसी होती हैं या अलग अलग कल्चर में अलग होती हैं?
ये भी एक बड़ा सवाल था, और यहाँ पॉल एकमैन का काम बहुत इम्पोर्टेंट है।
एकमैन? हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। चेहरे के भावों पर काम किया था ना?
बिल्कुल। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में रिसर्च की, यहाँ तक कि न्यू गिनी की एक ऐसी जनजाति पर भी जो बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी।
और क्या पाया उन्होंने?
उन्होंने पाया कि कुछ बेसिक भावनाएं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा और आश्चर्य, इनके चेहरे के भाव पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं।
मतलब स्माइल हर जगह खुशी का ही मतलब है?
हाँ, मोटे तौर पर ये इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ भावनाएं हमारे अंदर गहराई तक हैं, यूनिवर्सल है, हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है।
लेकिन फिर संस्कृति का क्या रोल है? अलग अलग जगह लोग अलग तरह से इमोशन दिखाते तो हैं।
सही कहा। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृति का कोई रोल नहीं। एकमैन ने डिस्प्ले रूल्स की बात भी की।
डिस्प्ले रूल्स ये क्या हैं?
मतलब हर समाज के अपने अनकहे नियम होते हैं कि कब, कहाँ और कैसे भावनाएं दिखाना ठीक है। जैसे शायद हमारे यहाँ बड़ों के सामने खुलकर गुस्सा दिखाना अच्छा नहीं माना जाता।
हाँ बिल्कुल।
जबकि किसी और कल्चर में ये ज्यादा आम हो सकता है। तो नींव भले ही यूनिवर्सल हो, पर इमारत पर संस्कृति का रंग जरूर चढ़ता है।
समझ गया। तो अब आते हैं वापस डैलन इवांस पर। वो इन सब बातों को, बॉडी, सोच, चेहरे के भाव, कल्चर, इन सबको कैसे जोड़ते हैं?
इवांस इन सभी धागों को एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के फ्रेमवर्क में एक साथ बुनते हैं। वे कहते हैं कि ये भावनाएं असल में इवॉल्व्ड कॉग्निटिव प्रोग्राम्स हैं।
इवॉल्व्ड कॉग्निटिव प्रोग्राम्स? थोड़ा आसान करके बताइए।
मतलब हमारे दिमाग में चल रहे खास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे, जो लाखों सालों में इसलिए बने ताकि हमारे पुरखे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें, जिंदा रह सकें।
अच्छा, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हर भावना एक खास मकसद के लिए बनी है, एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
कोई उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। जैसे डर का प्रोग्राम, ये क्यों बना? ताकि हम खतरों से बच सकें। शेर दिखा, प्रोग्राम चालू, आंखें फैली, दिल तेज धड़का, मांसपेशियां तनी, भागो या लड़ो।
राइट, फाइट और फ्लाइट।
हाँ, घृणा या डिसगस्ट का प्रोग्राम, ये हमें सड़ी गली चीजों, गंदगी या बीमारी फैलाने वाली चीजों से दूर रखने के लिए बना, ताकि हम बीमार ना पड़े।
लॉजिकल है। और गुस्सा?
गुस्सा शायद अपने हक या संसाधनों की रक्षा करने के लिए। कोई आपकी चीज छीने तो गुस्सा आता है ना?
हाँ, आता तो है।
और प्यार या लगाव, ये रिश्ते बनाने, बच्चों की देखभाल करने, साथ मिलकर रहने के लिए जरूरी था। इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था।
वाओ, इस नजरिए से देखें तो भावनाएं पागलपन नहीं लगती।
बिल्कुल नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए डिजाइन की गई स्मार्ट मशीनें लगती हैं।
और ये सिर्फ बाहरी बर्ताव की बात नहीं है, आपने कहा था इनका फैसले लेने से भी गहरा नाता है।
हाँ, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डिमासियो का काम आता है। उन्होंने ऐसे मरीजों पर स्टडी की जिनके दिमाग के वो हिस्से चोटिल हो गए थे जो भावनाओं को प्रोसेस करते हैं।
अच्छा,
जैसे वो फिनियास गेज वाला केस।
हाँ, वो ऐतिहासिक केस। और डिमासियो के अपने मरीज भी थे जैसे इलियट।
तो क्या हुआ इन मरीजों के साथ?
नतीजा दिमाग हिला देने वाला था। ये मरीज सोचने, समझने, याद रखने, तर्क करने में एकदम नॉर्मल थे। उनकी आईक्यू बिल्कुल ठीक थी।
फिर दिक्कत क्या थी?
दिक्कत ये थी कि वो जिंदगी के आम फैसले नहीं ले पा रहे थे।
क्या मतलब? कैसे फैसले?
जैसे कौन सी नौकरी चुने, किससे मिलें, कहां पैसा लगाएं। वो किसी चीज के फायदे नुकसान गिना सकते थे घंटों तक, पर ये तय नहीं कर पाते थे कि क्या चुनना है।
अरे ऐसा क्यों?
क्योंकि उनके अंदर से वो पेट की भावना, गट फीलिंग, गायब हो गई थी, जिसे डिमासियो सोमैटिक मार्कर कहते हैं। सोमैटिक मार्कर?
हाँ, ये वो अंदरूनी शारीरिक सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई ऑप्शन अच्छा लग रहा है या बुरा, एक तरह का इंट्यूशन। इनके बिना सारे ऑप्शन एक जैसे लगते थे, कोई वजन नहीं था।
बाप रे, इसका मतलब सोचने, समझने, यानी तर्क को सही ढंग से काम करने के लिए भावनाओं की जरूरत पड़ती है।
बिल्कुल, ये जबरदस्त सबूत है। बिना भावनाओं के हम दिशाहीन हो जाते हैं। तर्क अकेला काफी नहीं है फैसले लेने के लिए।
लेकिन इसमें एक पेच भी तो है, जैसा आपने पहले कहा था।
हाँ, पेच है। ये भावनाएं बनी तो उस पुराने जमाने के माहौल के लिए थीं, जंगल, शिकार, कबीले।
और आज की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, ऑफिस, ट्रैफिक, सोशल मीडिया।
एग्जैक्टली, इसे कहते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच।
एवोल्यूशनरी मिसमैच मतलब हमारा पुराना सिस्टम आज की नई दुनिया से मैच नहीं करता।
हाँ, जो डर हमें शेर से बचाने के लिए बना था, वही डर आज स्टेज पर बोलने से पहले या बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने से पहले महसूस होता है।
हाँ, हाँ, होता तो है।
जो गुस्सा शायद किसी दुश्मन कबीले से लड़ने के लिए था, वो आज ट्रैफिक जैम में भड़क उठता है।
समझ गया, हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नए सॉफ्टवेयर पर ठीक से चल नहीं रहा।
कुछ ऐसा ही, हमारा पुराना सिस्टम आज के नए तनावों को ठीक से समझ नहीं पाता और कई बार जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर देता है।
ये समझना तो बहुत काम का है, इससे अपनी कुछ रिएक्शंस को बेहतर समझ सकते हैं।
बिल्कुल, और भविष्य की बात करें तो एआई और रोबोटिक्स में भावनाओं का क्या रोल होगा? क्या हम मशीनों में भावनाएं बना सकते हैं? अगर हाँ, तो इंसान मशीन रिश्ते कैसे होंगे? ये भी बड़े दिलचस्प सवाल हैं जिन पर इवान सोचते हैं। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ खास बातें निकालें तो पहली और शायद सबसे जरूरी बात मेरे हिसाब से ये है, भावनाएं कोई गड़बड़ी या खामी नहीं है।
हाँ, ये मानना छोड़ना होगा।
ये हमारे काम आने वाले फंक्शनल अडैप्टेशंस हैं। ये हमें जानकारी देने वाले सिग्नल हैं जिन्हें हम नेगेटिव भावनाएं कहते हैं, जैसे डर, दुख, गुस्सा। वे भी असल में जरूरी अलार्म है।
अलार्म जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है या ध्यान देने की जरूरत है।
बिल्कुल, इवांस की भाषा में कहें तो भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अनिवार्य साथी हैं। ये सोच ही अपने आप में कितनी बड़ी शिफ्ट है।
हाँ, ये लाइन तो याद रखने वाली है। और दूसरी बड़ी बात क्या है?
दूसरी बात, तर्क और भावना का झगड़ा नहीं बल्कि जुगलबंदी जरूरी है। सिर्फ दिमाग से या सिर्फ दिल से काम नहीं चलता,
दोनों चाहिए।
हाँ, सही फैसले लेने के लिए दोनों चाहिए। भावनाएं हमें बताती हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या मायने रखता है। वो हमें मोटिवेशन देती हैं, किसी काम को करने की वजह और ताकत देती हैं।
और वो इंट्यूशन या गट फीलिंग वाली बात भी?
हाँ, इवांस के मुताबिक पेट की भावना असल में गहरा विकासवादी ज्ञान है जो हमारे अचेतन मन में जमा है। ये कोई जादू नहीं बल्कि हमारे दिमाग का तेज अनुभव आधारित कैलकुलेशन है।
अच्छा, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट है भावनाओं का सामाजिक रोल,
सोशल रोल। जैसे? मुश्किल हो जाएगी।
ये भावनाएं हमें मिलजुल कर रहने, नियमों का पालन करने में मदद करती हैं। भारत जैसे देश में जहाँ रिश्ते और सामाजिक मान मर्यादा इतने मायने रखते हैं।
बिल्कुल, यहाँ तो और भी ज्यादा।
वहाँ ये भावनाएं और भी जरूरी हो जाती हैं। और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। जैसा कि इवांस कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना और कुशलता से उनके साथ काम करना है।
मतलब मैनेज करना, दबाना नहीं। और चौथी बात?
चौथी बात है वो एवोल्यूशनरी मिसमैच वाली।
हाँ, कि हमारा पुराना सिस्टम आज फिट नहीं बैठता।
ये समझना कि क्यों कभी कभी हम छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं या बेवजह चिंता करते हैं। आज की चिंता अक्सर पुराने डर सिस्टम का नए खतरों पर रिएक्शन है जिन्हें संभालने के लिए वो बना ही नहीं था।
जैसे सोशल मीडिया पर किसी कमेंट पे गुस्सा आ जाना।
हाँ, शायद ये हमारी पुरानी इज्जत बचाने वाली प्रणाली का आधुनिक दुनिया में ओवर रिएक्शन है। और वो डमासो वाली बात भी याद रखने लायक है कि बिना भावना के इंसान सही फैसले नहीं ले सकता।
बिल्कुल, तो ये सारी बातें बड़ी दिलचस्प हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें।
हाँ, प्रैक्टिकल बात करते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना सीख सकते हैं।
कैसे?
उन्हें दुश्मन समझने के बजाय एक जासूस की तरह देखें, जानकारी का सोर्स, खुद से पूछें, ये गुस्सा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है या ये डर किस चीज से जुड़ा है, क्या ये खतरा असली है या मेरा पुराना सिस्टम बस ओवर रिएक्ट कर रहा है। अपनी भावनाओं को एक तरह से डीबग करना सीखें।
डीबग करना, अच्छा एनालॉजी है। दूसरा क्या कर सकते हैं?
दूसरा, हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने के बजाय अपनी गट फीलिंग पर भी ध्यान दें।
अच्छा, उसको भी वजन दें।
हाँ, अगर कोई बड़ा फैसला लेना है जैसे नौकरी बदलना या कहीं पैसा लगाना, तो लॉजिकल एनालिसिस के साथ साथ ये भी देखें कि अंदर से कैसी आवाज आ रही है, क्या वो चीज सही फील हो रही है। दोनों को मिलाकर फैसला लेना ज्यादा समझदारी है।
ये तो अच्छी टिप है। और काम की जगह पर, ऑफिस में?
वहां भी ये समझ बहुत काम आती है। टीम में कौन क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, किसे कब थोड़ी तारीफ या मोटिवेशन की जरूरत है, ये समझना। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी और टीम की भावनाओं को समझता है और सही तरीके से मैनेज करता है। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है।
सही बात है।
और शायद सबसे जरूरी बात, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना, सेल्फ कंपैशन।
सेल्फ कंपैशन मतलब?
मतलब जब हम समझते हैं कि हमारा डर, गुस्सा या उदासी लाखों साल पुराने विकास का हिस्सा है, ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस हैं, तो हम खुद को कोसना कम कर देते हैं।
हाँ, हम अक्सर सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझ में ही कोई कमी है।
बिल्कुल, लेकिन अरे हम सोचे अरे ये तो बस मेरा पुराना सेफ्टी अलार्म बज रहा है या ये मेरे अंदर का कोई पुराना प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया है, तो वो शर्म और गिल्ट कम हो जाता है। हम समझने लगते हैं कि ये इंसान होने का हिस्सा है।
ये कुछ कुछ CBT जैसा है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि हम चीजों को क्या मतलब देते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है।
हाँ बिल्कुल, हमारी व्याख्या मायने रखती है।
तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमें अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं समझना चाहिए बल्कि उन्हें एक तरह का गाइड मानना चाहिए।
बिल्कुल,
वो हमें समझने और दुनिया में बेहतर ढंग से जीने में मदद करने वाले शक्तिशाली औजार हैं, हमें बस उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी भावनाओं के पीछे कितनी गहरी बुद्धिमत्ता, कितनी विजडम छिपी है, ये कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि लाखों सालों की इंजीनियरिंग का कमाल है।
हाँ, ये कमाल की बात है।
हमें इन्हें दबाने या इनसे लड़ने की जरूरत नहीं बल्कि इन्हें ध्यान से सुनने और समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।